الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج میں آپ سے جس موضوع پہ بات کرنے آئی ہوں وہ وہی موضوع ہے جو آپ آج کل دن رات سن رہے ہیں. اگر آپ کسی مجلس میں چلے جائیں تو وہاں وہی موضوع ہے. آپ فیس بک اٹھا لیں, واٹس ایپ اٹھا لیں, انسٹاگرام خبریں سن لیں, ہر جگہ ایک ہی موضوع چل رہا ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بارے میں جانیں اور یہ دیکھیں کہ اس وقت ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے, ایسے حالات کیوں آتے ہیں, ان حالات میں اللہ تعالیٰ کیا ہم سے چاہتا ہے, یہ سب کیوں ہو رہا ہے. بہت سارے سوالات ذہن میں آتے ہیں اور ہم میں سے ہر کوئی اپنے اپنے مطابق ان کے جواب بھی دینے کی کوشش کرتا ہے. بعض لوگ آج کل یہ رویہ اپناتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے ہو رہا ہے, ہمیں اس سے کیا, ہم تو تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں گے نیوز, اس کے بعد ہم اتنے سیڈ نہیں ہو سکتے, ہم اپنی زندگی کنٹینیو کریں, ہمیں کیا بھائی وہ وہاں پہ کر رہے ہیں, اب کیا ہم ان کے پیچھے غمزدہ ہو کے بیٹھ جائیں. تو ان لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ نہ کچھ دیکھنا ہے نہ کچھ جاننا ہے زیادہ, بلکہ کیا کرنا ہے, اپنی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھیں, اپنی فیسٹیویٹیز کو, اور ناچیں گائیں جیسے چل رہا ہے ویسے چلیں, اور لیٹ دیم سفر, بٹ ایسے تو ہوتا ہی ہے, پہلے بھی تو ایسے ہوتا تھا. تو وہ زیادہ دھیان نہیں دیتے, اس کو کہتے ہیں غفلت, اس کو کہتے ہیں دل کی سختی. دوسری طرف ایسا بھی رویہ ہے کہ جب انسان ان کی ویڈیوز دیکھتا ہے اور ان کے حالات کو دیکھتا ہے تو دل پہ ایسا اثر ہوتا ہے کہ انسان اپنی ڈیلی لائف کو بھی کنٹینیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے, انسان بستر پہ پڑ جاتا ہے, کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا, اور ہر وقت ڈپریشن کا شکار ہو کے بالکل ہی سب کچھ کرنا چھوڑ دیتا ہے. دونوں رویے غلط ہیں. ایک رویہ ایسا ہے جو درمیانہ رویہ ہے, ہمیں وہ جاننا ہے کہ کیا ہمارا رویہ ہونا چاہیے. لیکن اس سے پہلے اس بات کا جواب جاننا ضروری ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, ایسا تو نہیں ہونا چاہیے, ہم تو مسلمان ہیں, ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ جس جگہ پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کو پاک زمین قرار دیا ہے اور بابرکت زمین قرار دیا ہے, یعنی یہ زمین اور اس کے ارد گرد کی جگہ ساری فرمایا بابرکت ہے, بہت برکتوں والی ہے. کئی انبیاء کا مسکن یہ جگہ رہی, کئی انبیاء یہاں پر آئے, اور ہمارے لیے تو تھرڈ جو سب سے مقدس جگہ وہ یہ ہے. پہلی مقدس جگہ حرم مکی, دوسری حرم مدنی, اور تیسری مکہ, اور ہمارا قبلہ اول ہے یہ پہلا قبلہ, اور اس کی حفاظت مسلمانوں پہ فرض کفایہ ہے, یعنی کچھ اگر اس کو کریں گے اس کام کو تو سب کے لیے کافی ہو جائے گا, لیکن کچھ کو کرنا ضروری ہے. اور آج وہ لوگ کر رہے ہیں, وہ جو ساری امت کا اوپر ایک فرض تھا یہ وہ لوگ کر رہے ہیں. تو پہلی تو بات یہ کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ کوئی پولیٹیکل بات نہیں ہے, بلکہ اس جگہ کے ساتھ ہمارے دین کی وابستگی ہے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج یہاں سے ہوئی تھی اور اس طرف انہوں نے سب سے پہلے نمازیں پڑھی تھی. اس کی ہسٹری بہت پرانی ہے, یہ آج کی نہیں ہے. ہسٹری میں جانے کا اس وقت تو وقت نہیں, مگر کم از کم اتنا ہم ضرور دیکھیں گے آج کہ اس کے بعد جو ہمارے رویے ہیں وہ کیسے ہیں, اور کیا ہمارے ان رویوں کی ہم سے پوچھ ہوگی. یاد رکھیے, ان کا تو یہ امتحان ہے اور بہت بڑا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں پہ فرعون کا ذکر کیا اور یہ ذکر فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرتا تھا, वहां पे अल्लाह ताला ने फरमाया वफी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम, इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ा इम्तिहान था उनके लिए, बहुत बड़ा इम्तिहान। आज इसी तरह का इम्तिहान इन लोगों पे, लेकिन आप क्या सोचते हैं क्या इम्तिहान सिर्फ उनके लिए? नहीं, ये इम्तिहान पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, वो कहीं पे भी है। इसलिए कि ये वो दौर नहीं है जिसमें हमें कुछ पता ही नहीं हो। अगर दूर कोई काम हो रहा होता था पहले जमाने में, तो उस वक्त लोगों को कुछ पता नहीं होता था, बाद में न्यूज पहुंचती थी। आज तो ऐसी है जैसे मेरे सामने ये सब कुछ हो रहा है, हम एक एक चीज विटनेस कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बाद अल्लाह ताला हमसे सवाल नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। ये हम सबका इम्तिहान है, हमारा हमारी जगह पे इम्तिहान हो रहा है, उनका उनकी जगह पे इम्तिहान हो रहा है। गो के उनका इम्तिहान बहुत बड़ा है, लेकिन हमारा भी इम्तिहान साथ साथ चल रहा है। और अल्लाह ताला ये जांचेगा कि कौन है इनमें से जो क्या रवैया इख्तियार करता है, कौन है जो क्या करेगा। याद रखिए सूरह अनकबूत जब स्टार्ट होती है तो अल्लाह ताला ने फरमाया क्या तुमने ये समझ लिया कि तुम ईमान ले आओगे और उसके बाद तुम्हें आजमाइश में नहीं डाला जाएगा, तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा, तुमसे पहले लोगों को भी आजमाया गया इसलिए ताकि हम देख लें तुम में सच्चे कौन है और झूठे कौन है। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ईमान का दावा करने वाले बाज लोग झूठे भी होते हैं, लेकिन वो सब रिले मिले रहते हैं, पता थोड़ी चलता है किसका ईमान का दावा सच्चा और किसका झूठा है। जब इम्तिहान अल्लाह ताला डालता है तब पता चलता है कौन है जो अपने ईमान में सच्चा है और कौन है जो अपने ईमान में झूठा है। तो ये चीजें किस लिए आती हैं? जो ये पिछले दिनों ही को पूछ रहा था, हम क्या लोगों को जवाब दें? लोग इतने क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पर क्यों ये आ रहा है, यानी उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनका ईमान हिल गया, मुतजलजल होने लगे। हालांकि ये पहली दफा नहीं हो रहा, आप इस्लाम की हिस्ट्री उठा के देखिए, ये तो होता रहा है मुसलमानों के साथ। क्या आप सुमैया को भूल गए, अम्मार बिन यासिर को भूल गए, हजरत खब्बाब को भूल गए, और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन सबको भूल गए, करबला का वाकया भूल गए, ये भूल गए। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, ये हमारी करबला है और इसके बाद इस्लाम जिंदा हो रहा है। कुछ लोग हैं जो डाउटफुल हो जाएंगे, कुछ लोग हैं जो शकूक में पड़ जाएंगे, ये कैसा दीन है, ये तो फिर अल्लाह ताला फिर कहाँ है अल्लाह, फिर क्यों हमारे पर ये हुआ। तो जानते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी ऐसे लोग थे, जिस वक्त हालात बहुत सख्त है, अभी मैंने पिछले दिनों ये वाकया पढ़ाया और सुभान अल्लाह बाय चांस हमारे पास सूरह अहज़ाब ही आ गई जो बिल्कुल रेलिवेंट है आज के हालात से। और जब हम जंगे आजाद के बारे में पढ़ रहे थे तो उस सूरत में यही तो है कि वो इतनी शदीद जंग थी, मुसलमान उसमें हिला दिए गए, इतनी जोर से हिला दिए गए, और मुनाफिक कहने लगे, मुनाफिक भी कहने को तो मुसलमान ही थे ना, कलमा पढ़े हुए थे, वो कहने लगे अल्लाह और उसके रसूल के बातें तो झूठे निकले, ये तो धोखा था, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने तो फरमाया था कि हमें रोम की फतह होगी, हमें फारिस मिलेगा, हम यमन तक पहुंच जाएंगे, ये क्या हुआ, हम तो बाथरूम तक जाने से भी रह गए। इतने मुश्किल हालात थे कि वाकई मुसलमानों पे खौफ इतना ज्यादा कारी था, इतना सख्त मुश्किल वक्त था, सारा अरब उमड़ के आ गया था और मुट्ठी भर मुसलमान एक मदीना की छोटी सी बस्ती में रहने वाले इतने लोगों के साथ मुकाबला कैसे करते। अल्लाह ताला ने वो वक्त भी दिखाया और अल्लाह ताला ने इसी सूरत में फरमाया अल्लाह ताला ये क्यों करता है, ताकि तुम्हें आजमा ले, तुम्हारा इम्तिहान हो जाए। और अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हें अल्लाह ने फतह दे दी बगैर लड़े हुए, बगैर कुछ किए हुए। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को कैसे फतह दी थी? क्या वो लड़े थे फिरौन से? अल्लाह ताला जब मदद करता है तो कैसे अल्लाह ने फिरौन को डबो दिया। लेकिन बनी इसराइल का भी इम्तिहान था, सहाबा का भी इम्तिहान हुआ, उनके बाद के लोगों का भी इम्तिहान हुआ। हम एक्चुअली इस दौर में रहते हैं कि हमें मीठे मीठे इस्लाम की आदत पड़ गई, मीठा मीठा इस्लाम, बस इस्लाम भी नाम का चलता रहे और करना भी कुछ ना पड़े। इस्लाम ऐसा नहीं है, ये बात आज समझ लें। इस्लाम में कुर्बानी है, इस्लाम में इम्तिहानात है, आजमाइशें हैं। अल्लाह ताला प्योर और अनप्योर को इसी दुनिया में अलग अलग कर देगा, ताकि कयामत के दिन कोई ये ना कह सके कि अल्लाह हमारा क्या कसूर था, हमें भी आजमाया जाता तो हम तो पता नहीं किधर पहुंच जाते। हाँ ये बात है, किसी का इम्तिहान किसी तरह से हो रहा है, किसी का किसी तरह से हो रहा है, मगर इम्तिहान में सबको ही है। और ये ना सोचिए कि इसके बाद नतीजा शायद काफरों के हक में अच्छा हो जाए। अल्लाह ताला कभी जुल्म नहीं करने वाला और वो जुल्म को कभी बर्दाश्त नहीं करता। हाँ मगर उसका अपना टाइम है। क्रूसेडर्स ने भी मुसलमानों के साथ जब जंगें की थी, अब हम तो हमने तो अपने लाइफ टाइम में एक्चुअली ये सबसे बड़ा हॉरर देखा है। जितने हम लोग बैठे हैं शायद हम में से मे बी एल्डरली ने देखा हो कोई सब कॉन्टिनेंट, जब पाकिस्तान इंडिया अलग हुआ था, हो सकता है उस वक्त कुछ मैसेकर देखा हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कभी नहीं देखा। हमारे लिए फर्स्ट टाइम है ये, तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे ऊपर ही कोई आफत टूट पड़ी। नहीं, जब क्रूसेडर्स आए थे और उनके घोड़े जब गलियों में जाते थे ना, तो घोड़ों के जो पांव थे वो मुसलमानों के खून से सारे डूब जाते थे उनके अंदर। जब तातारियों ने बगदाद पे हमला किया था, तो आप सोचें कि वहां उस बगदाद को खून में नहला दिया था। ये फर्स्ट टाइम नहीं है, मुसलमानों ने कुर्बानियां दी हैं हमेशा और ये कुर्बानियों का दिन है, मगर आज मुसलमान कुर्बानी देना भूल गए, आज मुसलमान तयीशात में पड़ गए। इसी वजह से आज हमारी ये हालत हो गई, और पता नहीं है हमें कि अल्लाह ताला हमें इससे क्या सिखाना चाहता है। क्योंकि जो जो भी ऐसी क्राइसिस होता है दुनिया के अंदर, वो या तो तीन में से एक रीजन होता है, या तो सजा के लिए होता है, या आजमाइश के लिए होता है, या तीसरी इसलिए होता है कि आपको सख्त कर दे कि आप आगे आने वाले हालात के लिए तैयार हो जाए। जैसे सहाबा कराम थे, अल्लाह ताला ने उनको कुंदन बना दिया आजमाइशों से गुजार के, उसके बाद वो बड़े टफ हालात से गुजरने के काबिल हो गए थे। तो अल्लाह ताला ऐसे हालात इन तीन में से एक रीजन से भेजता है। हमें समझना होगा कि हमारे ऊपर ये हालात क्यों आए, अल्लाह ताला हमें क्या सिखाना चाहता है। टेस्ट तो हो रहा है, लेकिन अल्लाह हमसे क्या चाहता है, क्या मतलूब है। उनकी तो मदद कभी नहीं होगी अल्लाह के साथ जो जुल्म करने वाले, जो उन मासूम बच्चों का खून करने वाले जिन्होंने अभी चलना भी नहीं सीखा था, जिनके गलों में अभी पैसिफायर पड़े हैं, उनका खून करने वालों के साथ अल्लाह ताला नहीं है, ये तो जान लीजिए। लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये भी समझ लें कि अल्लाह ताला जुल्म नहीं करता। हाँ मगर अल्लाह ताला दिखाता है इसी दुनिया के अंदर लोगों को आजमा कर। जब अबू जहल सुमैया के ऊपर जुल्म कर रहा था, तो क्या अल्लाह ताला अबू जहल के साथ था? जब फिरौन बनी इसराइल पे जुल्म कर रहा था, तो अल्लाह ताला फिरौन के साथ नहीं था? तो अल्लाह उन ताकतों के साथ नहीं है, ये तो यकीन कर ले। मगर हाँ ये जरूर है कि वो अपने लिए अपने जुल्म की वजह से अजाब आखरत का और इस दुनिया का भी समेट रहे हैं। एक वाक्य आता है इब्ने माजा में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा जब हिजरत हबशा से वापस आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुमने कुछ अनयूजुअल चीज देखी है? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हमने एक ऐसी अजीब सी बात देखी, एक बुढ़िया को हमने एक जगह पे जाते हुए देखा, उसने अपने सर के ऊपर पानी का डोल बर्तन उठाया हुआ था। तो वो जा रही थी कि एक नौजवान आया और उसने उस बुढ़िया को धक्का दिया, जिससे वो बर्तन नीचे गिर गया और बर्तन भी टूट गया और सारा पानी बह गया। वो बड़ी नेक खातून थी, उसने उस घुड़सवार से कहा कि वेट, एक उस दिन का इंतजार करो जिस दिन अल्लाह ताला अपना अर्श कायम करेगा और जिस दिन अल्लाह ताला तमाम जिन और इंस को जमा कर लेगा और जिस दिन हाथ और पैर बोलने लगेंगे, उस दिन मैं तुमसे सवाल करूंगी और इसका हिसाब लूंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ उस औरत ने सच कहा। हाँ, अल्लाह ताला उस कौम को कभी सुरखरू नहीं करता जो कमजोरों के लिए खड़ी नहीं होती जालिम के मुकाबले में। आज जुल्म हो रहा है और आप सोचते हैं कि कमजोरों का कोई सुनने वाला नहीं। हदीस में आता है, हदीस कुदसी, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे और मजलूम की आह के दरमियान कोई पर्दा नहीं, कोई पर्दा नहीं। अल्लाह ताला मजलूम की डायरेक्ट सुनता है, हाँ, मगर वो कहता है कि हाँ मेरा अपना वक्त है जिससे मैं बदला लूंगा, मगर वो बदला जरूर देता है। और जो लोग इसमें कुर्बानी दे रहे हैं उनको भी जो बदला मिलेगा, जब हम उनका बदला देखेंगे कयामत के दिन, तो हम हैरान हो जाएंगे। और जो जालिमों का बदला होगा वो भी जब देखा जाएगा, तो लोगों को इसी दुनिया में पता चलेगा कि किसके साथ अल्लाह है और किसको अल्लाह ताला रुसवा करता है। तो ये इस दुनिया में अल्लाह ताला दिखाता है, और कयामत की निशानियां करीब हैं, ये निशानियां पूरी हो रही हैं, और हमें अपना किरदार निभाना है। हम अब सो नहीं सकते, हमारे जागने का वक्त है। अब और कौन सा वक्त आएगा जो हमें होश में लेकर आए? ये वक्त सोने का नहीं है। अब जो लोग सो रहे थे वो जाग जाएं, क्योंकि अब एंड ऑफ टाइम करीब आ गया है। अब जो निशानियां थी वो पूरी हो रही और हमारे सामने हो रही। इसमें हमने क्या किरदार अदा करना है अमली तौर पे बाहर की दुनिया के साथ, वो मैं आपको 5-6 चीजें वो बताती हूँ, और फिर इंडिविजुअली हमने क्या करना है 4-5 वो चीजें बताती हूँ आपको। पहली चीज जो आप अमली तौर पे यहाँ पे कर सकते हैं, याद रखिए कि हम लोगों के पास एक वॉइस है। अल्लाह ताला हर एक को उसके मुताबिक जज करेगा जितनी उसके अंदर ताकत है। आपकी अगर इतनी सी ताकत है, आपको इसके मुताबिक हिसाब देना होगा आखिरत में। याद रखिए, हमसे पूछा जाएगा कि जब वो वहां पर ऐसे बेईमाना तौर पे कत्ल किए जा रहे थे, तो तुम देख रहे थे ना कि तुमने क्या किया, क्या किया तुमने? तो हम क्या कहेंगे? हम तो यहाँ पे नाचने गाने में लगे हुए थे, और हमें क्या था, हमसे तो वो दूर बैठे थे, और हम क्या करते हैं? हमारे पास कौन सी कोई ताकत थी? नहीं, सबके पास ताकत है। एक ताकत वो है, ये जो जुबान की ताकत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जब तुम बुराई को देखो तो उसको अपने हाथ से रोको। हाथ से नहीं रोक सकते तो कैसे रोको? जुबान से रोको। जुबान से नहीं रोक सकते तो कैसे रोको? कम से कम दिल में तो बुरा समझो। आज जुबान से बोलने के लिए आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है इस मुल्क में। आप सबको ये फ्रीडम इन्होंने खुद दी ली है, फिर भी अगर कोई ना बोले, किस डर की वजह से? मेरे घर FBI ना आ जाए, मेरी जॉब ना चली जाए, हाय पता नहीं कुछ हो ना जाए। आज मेरा आप लोगों से सवाल है, इसका जवाब दीजिए मुझे। यहाँ पे आपकी जिंदगी और मौत का मालिक कौन है? वाकई इतना ऊंचा होना चाहिए कि पता चले कौन है, कोई डाउट है? अल्लाह। आपके रिस्क का मालिक कौन है? आपके नफा और नुकसान का मालिक कौन है? तो फिर क्यों डरते हैं, क्यों नहीं निकलते? इतना दुख होता है जिस वक्त प्रोटेस्ट में जाके हम देखते हैं, नहीं हमारे जानने वालों में से तो इक्का दुक्का कोई शक्ल नजर आ रही, कोई भी नहीं। क्यों? मर जाओगे? हमसे ज्यादा वो लोग जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। जो जिंदगी और मौत है ना, वो अल्लाह के हाथ में। कोई आपको मार नहीं सकता जब तक अल्लाह ना चाहे, कोई आपको नुकसान नहीं दे सकता जब तक अल्लाह ना चाहे, कोई आपका रिस्क छीन नहीं सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। किधर गया ये ईमान? किधर गया ये जज्बा? क्यों दुबके बैठे हो घरों में? क्यों नहीं निकलते? कुछ हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले अपनी आवाज सुनवाओ दुनिया को। फिर हम कहते हैं लेकिन हमारे जाने से क्या होगा, इतनी प्रोटेस्ट तो हो रही है। आपके जाने से यहाँ कुछ नहीं होगा, आपके जाने से ये होगा कि आप अल्लाह ताला को जवाब दे सकेंगे, अल्लाह मैं गई थी। अब वो पता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए जब आग जलाई गई तो उस आग के करीब इंसान भी नहीं जाते थे, इतनी बड़ी आग थी। उस वक्त एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी का एक कतरा ला के डालती थी। तो किसी ने उस चिड़िया से कहा, ऐसी चिड़िया तू एक कतरा ला के डालती है, तेरे कतरे से क्या होगा, ये आग क्या बुझ जाएगी तेरे कतरे से। तो उसने कहा, मेरे पास एक चोंच ही तो है, जब मेरा अल्लाह मुझसे सवाल करेगा तो मैं कहूंगी अल्लाह मेरी जितनी चोंच थी मैंने उसके मुताबिक अपना काम कर दिया। आपके पास जितनी चोंच है उतना तो काम कर दे, कोई आपसे इससे ज्यादा नहीं मांग रहा, कोई आपको कह नहीं रहा वहां जाके मर जाओ, मगर जितना आप कर सकते हो उतना तो करो। इतना बड़ा प्रोटेस्ट होना चाहिए कि सड़कों तक के ऊपर सिवाय इंसानी सर के कुछ नजर नहीं आना चाहिए, कि बहरे को भी सुन जाए कि लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि लोग बहरे हो गए हैं, उनको भी सुन जाए, इतनी ऊंची बोलो। लेकिन हम दुबक गए तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसे ही लोगों के लिए कि मेरी उम्मत पे एक वक्त ऐसा आएगा कि जो काफिर होंगे वो इनको खत्म करने के लिए एक दूसरे को ऐसे बुलाएंगे जैसे दस्तरखान पे भूखा बुलाता है, आओ आके खाना खाओ, ऐसे बुलाएंगे। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह उस वक्त क्या हम कम होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं तुम कम नहीं होगे, तुम तो इतने ज्यादा होगे जितने सैलाब में बहने वाले जो तिनके होते हैं ना, इस तरह से तुम होगे, लेकिन तुम्हारा रोग दुश्मन के दिल से निकल चुका होगा और तुम्हें वहन की बीमारी लग चुकी होगी। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह वहन की बीमारी क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत और मौत का खौफ, मर जाएंगे नहीं मरते। दुनिया की मोहब्बत एक्चुअली इतनी ज्यादा है कि हम इसके साथ चिमट के रह गए और हमें लगता है वो ना हमें मार दे, वो ना हमें मार दे। तुम घरों में भी बैठ गए तो तुम्हें कोई मार देगा, क्योंकि मारने वाला वो है, इंसान नहीं है। मुनाफिक भी घरों में बैठ जाते थे, हाय हम मर ना जाए, कब तक मौत से बचोगे? क्या जॉब उनकी नहीं जाती, जो कि किसी भी वजह से ऐसे ही चली जाती है, कोई किसी को ले ऑफ हो जाता है, क्या उनकी जॉब नहीं जाती? लेकिन आज जॉब जाने का इतना डर है कि हम अगर चले गए किसी को पता चल गया तो क्या होगा। नहीं, मोमिन बुजदिल नहीं होता, मोमिन बहादुर होता है। अगर आपने बहादुरी सीखनी है तो फलस्तीनियों से सीख लो। हम अपने घरों में बैठ के डर रहे हैं, वो अपने घर लुटा के भी दलेरी से खड़े रहे, और उनके ईमान कैसे, उनसे ही सीख लो ईमान कैसा होना चाहिए। क्या अल्लाह ताला नहीं पूछेगा, तुम एसी में बैठे थे, तुम घरों में आराम से बैठे हुए थे, फिर भी क्या तुम निकल नहीं सके? फिर दूसरे अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, आपके कांग्रेसमैन, आपके वो व्हाइट हाउस का फोन नंबर आपके पास आता है, फोन करें, हाय वो हमारा नाम ना ले ले, हमारा नाम चला जाएगा वहां पे, हमारा कुछ एड्रेस चला जाएगा वहां पे। याद रखिए वो आपके वोटों से बनते हैं, दे केयर ओनली अबाउट योर वोट, लेट इट बी हर्ड कि मेरा वोट आपके लिए नहीं होगा, लेट इट बी हर्ड। उनको पता होना चाहिए इतने मुसलमान हमें वोट नहीं देंगे, दे ओनली केयर अबाउट दैट, और कुछ उनको केयर नहीं है, उनको किसी पे रहम नहीं आएगा, मगर हाँ आपके वोट की उनको बहुत फिक्र होगी। तीसरी चीज क्या है, माली ताबुन कीजिए उन लोगों के लिए, जितना आप माली ताबुन कर सकते। सिर्फ ये नहीं कि जब पूछा जाए तो अच्छा हम अपनी जकात में से दे सकते, ऑब्वियसली आप अपनी जकात में से तो दे सकते, व्हाट एल्स देन, क्यों हमेशा हम यही सोचते चलो जकात में से ही दे देते, क्योंकि हम कुछ और नहीं निकालना चाहते। कभी अपनी ख्वाहिशात को कम करके उनके लिए दे के देखे, हम कुछ और तो नहीं कर सकते, उनके प्यारों को नहीं ला सकते, लेकिन हम कुछ अपनी ख्वाहिश कम करके उनके लिए तो दे सकते, अपना कुछ बजट कम करके फिर उनके लिए तो कुछ स्पेंड कर सकते हैं। इसी तरह हम सब ये तहिया कर लें, मेरा एक डॉलर भी किसी यहूदी के अकाउंट में नहीं जाएगा, मुझे मैकडोनल्ड बहुत पसंद है, मुझे तो उसकी स्टारबक्स की कॉफी के बगैर तो मेरा दिन ही नहीं गुजरता, हाय क्या करूं। ये नहीं होना चाहिए। अगर हमसे इस वक्त सब्र नहीं होता तो याद रखिए, जब दज्जाल का फितना आएगा ना, वो इतना बड़ा फितना होगा, उस वक्त कैसे फेस करेंगे उसको? अगर हमसे एक कॉफी पे सब्र नहीं होता, दज्जाल के तो एक हाथ में फायर होगी और एक हाथ में जन्नत होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो उसकी आग है वो जन्नत है, जो उसकी जन्नत है वो जहन्नम है। कौन आग में कूदना चाहेगा उस वक्त? कोई भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे बाद इतने फितने आएंगे, इतने फितने आएंगे, और कुर्बे कयामत तो फितनों की इंतहा हो जाएगी। आप उन आजमाइशों में कैसे खड़े होंगे अगर छोटी छोटी चीजों पे हमसे सब्र नहीं होता? अगर वॉलमार्ट जाना मुझे पसंद है, अगर मुझे पता चलता है कि ये लोग हैं जो उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं या उनके लिए एड भेज रहे हैं जिससे वो एक और गोली भी खरीद सकता है मेरे भाई को मारने के लिए, मैं उस गोली को खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं दूंगी। क्यों? इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया, उम्मत मुस्लिमा एक जस्दे वाहिद है, एक बॉडी है, एक बॉडी है, इसकी एक चीज में दर्द होती है, पूरा जिस्म तड़पता है, उसको नींद नहीं आती। हमें नींद आ जाती है? हमारे लिए ओके है कि वो मर रहे हो और हम अपना डॉलर उनको दे रहे हैं कि जाओ और मारो? मेरा एक डॉलर भी ना जाए, एक डॉलर। और ये मत कहिएगा मेरे एक डॉलर से क्या फर्क पड़ता है, वैसे ये लोग तो इतना कमाते हैं। हमने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी कि बारिश का एक कतरा था, जमीन सूखी हुई थी, वो बारिश का कतरा सोचता है मेरे जमीन पे गिरने से क्या फायदा होगा, जमीन इतनी सूखी है, मैं एक कतरा हूं, जब तक सारे ना आए फायदा क्या? फिर उसने सोचा, मेरे ऊपर तो मेरा मेरा अपना आप ही है ना मेरे कंट्रोल में, तो मैं नीचे जाता हूं, मैं अपनी हस्ती मिटाता हूं। वो नीचे कूद गया और उसके पीछे कितने ही कतरे कूद गए और जमीन सरसब्ज हो गई। हर कतरा अगर ये सोचता है मेरे करने से क्या होगा, तो वाकई कुछ नहीं होगा। आप यकीनन एक कतरा ही है, लेकिन जब हम सब मिलेंगे तो बहुत सारे कतरे बन जाएंगे और ये बारिश होगी। तो एक ये काम कीजिए। दूसरे हमें ये करना है कि सोशल मीडिया पे अपनी कैंपेन चलाएं। आप सब फेसबुक पे हैं, कोई इंस्टाग्राम पे है, कोई कुछ, डरे नहीं, जो डर गया वो मर गया, डरे नहीं। खुदा के लिए बुजदिली छोड़ दे, खुदा के लिए बुजदिली छोड़ दे, कुछ नहीं होगा आपको, आपका प्रोटेक्ट करने वाला अल्लाह है। अगर लोगों की प्रोटेक्शन चाहोगे ना, तो अल्लाह ताला आपको छोड़ देगा, और अगर अल्लाह की प्रोटेक्शन में आ जाओगे तो कोई आपका बाल भी बीका नहीं कर सकता। सोशल मीडिया पे आप जहां जहां हैं, इन लोगों के जो मकरूह चेहरे हैं वो लोगों को दिखाइए, आगे बढ़िए। हम फेसबुक पे हर बेकार चीज लगाते हैं, टिकटॉक किसी का कुछ है कुछ। अब हमारा जिहाद ये है कि हम सोशल मीडिया पर ये सारी चीजें बताएं कि देखो क्या जुल्म हो रहा है, आगे बढ़िए इसके अंदर, और रोए नहीं कि हाय देखो हमारे पास। सोशल मीडिया पे आप दिखाएं कि हम फिर भी अपने रब पे भरोसा करते, हमारा ईमान मजबूत है, सीना तान के खड़े रहे, ये रोने का वक्त नहीं, आंसू पोंछ ले और मजबूत हो जाए। आपका ये करना क्या करेगा? जो आज हो रहा है कि गैर मुस्लिम भी कह रहे हैं ये लोग कैसे हैं, इनका ईमान कितना मजबूत है, वो फलस्तीनियों को देख देख के हैरान हो रहे हैं, ये कैसे लोग हैं जिन्होंने हर चीज गंवा दी फिर भी खड़े नहीं, इनका ईमान इतना मजबूत है। तो अपने ईमान की मजबूती दिखाएं, दिखाएं हौसले के साथ खड़े हों, और ये दिखाएं हमारा अल्लाह पे भरोसा है और हम अपने अल्लाह की मदद के मुंतजर हैं और हमारे लिए मदद जरूर आएगी। तो ये पांच काम आप करें, और अपने तौर पे हम क्या कर सकते हैं? पहली चीज दुआ। दुआ मोमिन का हथियार है, और दुआ के लिए भी देखें, जो दुआ दर्द दिल से की जाए ना वही कबूल होती है। ये नहीं अल्लाह फलस्तीनी मुसलमानों की मदद फरमा दे, अल्लाह ये कर दे, ये कोई आप टेबल नहीं पढ़ रहे। जो दुआ रो के आपके दिल से निकलेगी। जब आप कोई वीडियो देखिए, आपका रोना आ जाए ना, इसका मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अदा करें, अभी आपका दिल जिंदा है, अभी आप मरे नहीं है। शुक्र अदा करें, इन आंसुओं के ऊपर भी आपको अजर मिलेगा कि ये नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए बहे। उस वक्त फौरी तौर पे दुआ मांगे, क्योंकि अल्लाह दुखी दिल की दुआ सुनता है। कुछ नहीं कर सकते, दुआ तो है ना, और दिल से की गई दुआ जरूर अल्लाह ताला सुनेगा, कभी मायूस ना हो। दुआएं जो है वो ही है जो तकदीर को बदल देती है। उन्होंने उनका खाना पीना बिजली सब काट दी, दुआ को तो नहीं काट सकते ना। दुआ तो अल्लाह ताला तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, तो दुआएं कीजिए उनके लिए। दूसरा, अपने ईमान को मजबूत करें। खुदा के लिए ये वक्त है ईमान को मजबूत करने का, होश में आने का। हमारा ईमान इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, डोंट डाउट, नेवर डाउट द मर्सी ऑफ अल्लाह सुभान व तआला। नेवर डाउट के पता नहीं ये सब सही भी है कि नहीं, पता नहीं ये सब जो हो रहा है तो क्या हो रहा है, पता नहीं अल्लाह ताला अस्तग़फिरुल्लाह के अल्लाह ताला को कोई जुल्म हो रहा है, क्यों अल्लाह ये होने दे रहा है। इस तरह के क्वेश्चन करना हमारा काम नहीं है, ये अल्लाह ताला की हिकमत है, वही जानता है। याद रखिए, सहाबा कराम जो होते थे ना, उनका ईमान आजमाइशों में मजबूत हो जाता था। जब उहद में उनको शिकस्त हुई और काफरों की तरफ से पता चला कि वो लोग वापस आ रहे हैं, उहद में मुसलमानों को जिस तरह से नुकसान उठाना पड़ा था, उसके बाद काफिरों ने मुसलमानों की तरफ ये पैगाम भेजा कि हम वापस आ रहे हैं, तो कुछ लोगों को उन्होंने इस तरह की अफवाह उड़ाने के लिए मुसलमानों की तरफ भेजा। जानते हैं सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला क्या फरमाता है, इन मोमिनों की जो जख्मों से चूर थे, जो शिकस्त खुर्दा थे, जिनके घरों में शहादतें हुई थी, अल्लाह ताला फरमाता है कि जब उनके पास लोग आए ये कहने के लिए कि ओ दुश्मन तो आ रहा है वापस, देखना अब वो तो तुम्हें वाइप आउट कर देगा, तो उन्होंने क्या कहा, अल्लदीना कालू, जब उनसे कहा गया, अल्लदीना काल लहुमुन नास, जब उनसे कहा कि लोगों ने आके कहा जमा हो, कि बेशक लोग तुम्हारे लिए जमा हो रहे हैं, तो वो बजाय इसके कि डर जाते, हाय लोग हमारे लिए जमा हो रहे हैं, अब हमारा क्या होगा, हम तो पहले से भी कम हो गए, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन्होंने उनको कहा फख्शौहुम, डरो उनसे, वो आ रहे हैं आपको मिलने। तो जानते हैं क्या हुआ, अल्लाह ताला ने फरमाया, उनका ईमान तो और बढ़ गया, उनका ईमान और बढ़ गया। ये सहाबा जो होते थे ना, जब उनके ऊपर आजमाइशें आती थी, उनका ईमान बढ़ जाता। वकालू हस्बुनल्लाहु व नियमल वकील, और वो कहने लगे हमारे लिए तो अल्लाह ही काफी है और वो बेहतरीन वकील है। सुभान अल्लाह, वो आजमाइशों में और मजबूत हो जाते थे, हम आजमाइशों में गिर पड़ते हैं। ये कमजोर ईमान की निशानी है, आजमाइश जब आए तो चेक करें अपने ईमान को, पहले से मजबूत हो गया या पहले से भी ज्यादा दुबक के बैठ गए और डर गए। जब किसी ने कह दिया ओ पता नहीं आजकल वो नोट कर रहे हैं, भाई जो प्रोटेस्ट में जा रहे हैं ना, एफबीआई उनके घर आ रही है, अरे हम तो पहले ही डर के बैठ गए, अल्लाह हमारे घर ना आ जाए। व्हाट, कुरान के आईने में देखे हम कहाँ खड़े रहे थे, हमारा तर्ज अमल मुनाफिकों जैसा या मोमिनों जैसा, उनका तो ईमान बढ़ जाता था, कहते थे हसबुन अल्लाह व नियमल वकील, हमारे लिए अल्लाह काफी है। तो ईमान को मजबूत करने का वक्त है। याद रखिए, अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ेगा, वो छांट देगा। छट रहे हैं लोग, जैसे आप वो देखे ना, वो चावल या वो दाने करते थे ना पहले, तो उसमें से कंकर अलग अलग हो जाए, ऐसे छांटते थे ना, तो अल्लाह ताला ऐसे शेक कर रहा है, जलजला आ रहा है, कंकर निकल जाएंगे, प्योर रह जाएंगे। जो लोग थोड़े थोड़े ईमान वाले थे ना, वो उनके ईमान पहले से भी जाएंगे, जो थोड़े ज्यादा थे वो कमजोर पे आ जाएंगे, और कई ऐसे होंगे उनके ईमान बढ़ जाएंगे। याद रखिए, ये तो कुछ भी अभी आजमाइश नहीं है, बड़ी बड़ी आजमाइशें पहले लोगों पे गुजर चुकी है। जिस वक्त के हम कुरान पाक में पढ़ते हैं सूरह बकरा में, हम हसीब तुम हम सबको जन्नत है, तुम समझती हो कि तुम जन्नत में ऐसे ही चले जाओगे, يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ, ابھی تو تمہارے اوپر وہ حالات آئے ہی نہیں جو تمہارے سے پہلے لوگوں پہ آئے تھے. حضرت حباب کے اوپر جب اتنا ظلم کیا گیا تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے ساتھ ٹیپ لگائے ہوئے بیٹھے تھے. آ کے انہوں نے فرمایا, یا رسول اللہ اتنا مشکل وقت ہمارے اوپر آ گیا, کب آئے گی اللہ کی مدد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم ابھی سے گھبرا گئے؟ ہم کیا ابھی سے گھبرا گئے؟ آتی کیوں نہیں اللہ کی مدد؟ ہم تو اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں, یعنی ادھر ہم دعا مانگے ادھر فرشتے اترنا شروع ہو جائیں, یہ ایسے نہیں ہوتا. ان کے اوپر اتنی مصیبتیں آئیں حتیٰ کہ رسول بھی اور مومن بھی کہہ اٹھے, متا نصر اللہ, رسول بھی کہہ اٹھا کہ کب آئے گی اللہ کی مدد. تو تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا, لا الہ الا اللہ قریب. جب یہ پوائنٹ آ جائے نا کہ انسان کہہ اٹھے کب آئے گی اللہ کی مدد, مومن بھی کہہ اٹھے, سمجھ لو اب اللہ کی مدد قریب ہے, اللہ کی مدد آ کے رہتی ہے. تو اللہ کی مدد آئے گی, ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. جس وقت کے صحابہ کرام کے اوپر ایسے حالات آتے تھے تو وہ کہتے تھے, ہاں یہ اسی کا تو وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے. منافق کہتے تھے اللہ اور اس کے رسول کے وعدے جھوٹے تھے, دھوکا تھا. اور ایمان والے کہتے تھے اسی کا تو وعدہ کیا تھا انہوں نے, اور اللہ اور اس کے رسول کے وعدے سچے ہیں. ہم ارے کیا وعدہ کیا تھا کہ آزمائش آئے گی, تو ہمیں بھی کہنا چاہیے کہ اس کا تو وعدہ آیا ہے قرآن میں, جگہ جگہ قرآن کہتا ہے آزمائش آئے گی آزمائش آئے گی. تو آزمائش آ گئی ہے, اللہ کا وعدہ سچا ہے, اللہ آزما رہا ہے تمہیں. تو اپنے ایمان کو مضبوط کریں. اور تیسرا چیز کیا, شکر گزار بن جائیں خدا کے لیے, کمپلینٹس کو چھوڑ دیں, کمپلینٹس نہ کریں آپ. کیونکہ جب آپ کو کوئی کمپلینٹ آئے, دل میں کوئی شکایت آئے, فوراً ان لوگوں کی طرف دیکھیں کہ ان کے اوپر کیا حالات گزر رہے ہیں, میں کس منہ سے کمپلینٹ کر رہی ہوں, کیسے میں شکایت کر سکتی ہوں, کیا میرا منہ بھی اس قابل ہے کہ میں کچھ کہہ سکوں, ہائے یہ کیوں ہائے وہ کیوں. میں آلویز شکر گزار ہوں, میرے سر پہ چھت ہے, میرے گھر والے عافیت میں ہیں, میں امن و امان سے ہوں. یقین کریں میں نے ایک فلسطینی عورت کی بات سنی, اس نے کہا ہمیں کھانا نہیں چاہیے, ہمیں پینا نہیں چاہیے, ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے, ہمیں پیسے نہیں چاہیے, ہمیں صرف امن چاہیے. صرف امن اتنی بڑی نعمت ہے جو ہم انجوائے کر رہے ہیں کہ آج ہم امن کے ساتھ بیٹھے ہیں, یہ موقع ہے شکر گزاری کا. چوتھی چیز کیا ہے, مضبوط ہو جائے, اسٹرانگ ہو جائے, چھوئی موئی نہ بنے. ایمان بھی ہمارا بڑھ جانا چاہیے اور ہمیں خود بھی مضبوط ہو جانا چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر رونے نہ بیٹھ جائیں, مضبوط ہو جائیں, چوئی موئی بننا چھوڑ دیں. آپ میں نے جیسے آپ کو بتایا, مومن بہادر ہوتا ہے, حوصلے والا ہوتا ہے, کیونکہ اس کی نظر اللہ کی طرف ہوتی ہے. روئیں تو اللہ کے آگے روئیں, لوگوں کے آگے رونا بند کر دیں. اور پانچویں چیز بہت امپورٹنٹ, کہ ہمیں کون سی چیز تھامے گی ان حالات میں, وہ ہے قرآن. قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں خدا کے لیے. اگر آج تک آپ نے اس کی اہمیت نہیں جانی تو کم از کم آج تو جان لیں کہ یہی ہے جو ہمیں تھامے گا, ہمیں کھڑا رکھے گا, ہمیں پکڑ کے رکھے گا, ورنہ کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم بہہ جائیں. یہ وہ وقت ہے فتنوں کا کہ ایک کے بعد ایک فتنے آئیں گے, فتنے اب ختم نہیں ہونے ہیں, ایک کے بعد ایک فتنہ, ایک کے بعد ایک فتنہ. آپ کیسے کھڑے رہ سکیں گے اگر قرآن کا سہارا نہیں ہوگا؟ قرآن آپ کو ایسی تسلی دیتا ہے, ایسی تشکی دیتا ہے, ایسے آپ کا ایمان بڑھاتا ہے, ایسے آپ کو حوصلہ دیتا ہے کہ آپ طوفانوں میں کھڑے ہونے کے قابل ہو جاتے ہیں. یہ ہے قرآن کا کردار. یہ صرف رمضانوں میں تلاوت کر کر کے پڑھ پڑھ کے رکھنے کے لیے نہیں آیا, یہ اسی لیے آیا کہ ان طوفانوں کے وقت میں ہمیں تھام لے. تو اس قرآن کو تھامیے. یہ آج صرف اس لیے نہیں کہ ہم ثواب کے لیے پڑھیں, یہ ہمارا سروائیول ہے. اف یو وانٹ ٹو سروائیو اس دور فتن میں, قرآن کے علاوہ کوئی چیز نہیں. اب کوئی نبی نہیں آئے گا, اب کوئی رسول نہیں آئے گا جس کے پاس آپ چلے جائیں. اب ہے قرآن جو آپ کو تسلی تشفی دے گا, اور اس کو آپ تھامیں گے तो आप उस वक्त ही मजबूत रह सकेंगे, वरना गिर पड़ेंगे। तो ये वो वक्त है कि आप कुरान को थामिए, कुरान को सीखिए, कुरान से तसल्ली लीजिए, इसके करीब आइए और छोड़ दें सारी दुनिया के बहाने कि अब जॉब है और अब बच्चे हैं और अब घर है और अब ये जिम्मेदारियां और अब वो जिम्मेदारियां। हाँ वो भी चलेंगी, लेकिन अब कुरान के बगैर नहीं रहना, ये तहिया कर लीजिए, कुरान के बगैर मैंने नहीं रहना। तो ये पांच चीजें जो बाहर कर लेंगी और पांच जो हम अपने साथ करेंगे, अपने लिए करेंगे, अपने अंदर करेंगे। तो इस क्राइसिस से जब हम गुजरेंगे ना, तो ऐसे ही होगा इंशाल्लाह, ये तो गुजर जाएगा, लेकिन ऐसे ही होगा जैसे तूफान आता है ना, तूफान गुजरता है तो उसके बाद आपको नजर आता है कौन सा पेड़, कौन सा दरख्त मजबूत खड़ा रहा और कौन से कमजोर से पौधे उखड़ के कहीं गिरेंगे। इस तूफान के बाद भी पता चल जाएगा कि कौन थे वो मजबूत दरख्त जो खड़े रहे बहादुरी के साथ, और कौन थे वो बस ऐसे फ्रेजाइल से पौधे जो गिर के पड़े, ये सब पता चल जाएगा। और यही अल्लाह ताला ने वादे कर देना, दिखा देना। अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल फरमाए जिनका ईमान और बढ़ जाए इसके बाद, और जो अल्लाह पे तवक्कल करने वाले। हम दुआ कर लेते हैं।